और लीजिए अब एक देश के प्रमुख गीतकार जिन्हें विशेष रूप से इस कवि सम्मेलन में हमने दिल्ली से बुलाया है और मैं विशेष रूप से आप सब से प्रार्थना करूंगा कि आप थोड़ी देर बड़ी शांति रखिए, अपना स्थान धारण कीजिए। बात ठीक है, कुछ शारीरिक धर्म होते हैं, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें करने के लिए इधर उधर होना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ी देर अगर आप रुक जाएं, तन्मयता से सुने तो आपको आनंद आएगा। मैं थोड़ी देर बाद आपकी उन क्रियाओं के लिए एक घोषणा करूंगा इंटरवल की, लेकिन तब तक आप शांति रखिए। मैं आपसे कह रहा था कि देश के प्रमुख गीतकार कविवर संतोष आनंद, जिन्होंने जितनी फिल्मों में जितने गीत लिखे सबके सब हिट, रोटी कपड़ा मकान, पूरब पश्चिम, शोर, क्रांति, प्यासा सावन और आजकल चल रही सबसे बेहतरीन फिल्म प्रेम रोग, प्रेम रोग में भी इनके गीत हैं। लीजिए आने वाली फिल्म का नाम है संतोष, जिनमें इनके बहुत अच्छे अच्छे गीत आप सुनेंगे, आने वाली फिल्म का नाम। लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक तमाम दिशाओं में जिनके गीत गूंजते हैं, ऐसे सुमधुर गीतकार भाई संतोष आनंद आपके सामने आ रहे हैं मित्रों। और मैं ये कहूंगा कि गीतों का पवित्र गंगाजल बरसाता आता है, गीतों का पवित्र गंगाजल बरसाता आता है, संतोष आनंद है गीतों से हर उपवन महकाता है। जोर से आप इनके सम्मान में एक बार करतल ध्वनि करें। आ रहे हैं संतोष आनंद।
साथियों, जी हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आप यहाँ के खड़े होके सुनेंगे तो आपको भी सुनाई नहीं देगा। पहले क्योंकि पहला दौर है और वैसे अपन लोग काफी थके थकाए हैं, रोजाना ही कभी सम्मेलन कहीं ना कहीं होते हैं और जो स्वर से पढ़ते हैं उन लोगों को गड़बड़ हो जाती है, आप लोग भी समझते हैं। एक गीत जो मैं आजकल खास तौर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि पहला दौर है, खुला माहौल है, इसलिए सुना रहा हूँ, शहीदों के नाम एक गीत, राष्ट्रीय कवि सम्मेलन। ए भैया बैठ जा तू, या तो तू पानी पिला ले या मैं पिला लूं इन्हें। एक छोटा सा गीत आपको सुना रहा हूं। हाँ देखो, एक बात है, ये पहले दौर को निमट लेने दो, फिर मैं आपकी सबकी मांगे मर दूंगा, सब मेरे कान तक जरूर आ जाती है, लेकिन पहला दौर निमट लेना दो। शोले और भड़क उठते हैं आंधी में तूफानों में, सबसे पहले कौन मिटेगा, उड़ लगी परवानों में। और जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, तूफानों से खेली है हमारी जिंदगी, आफतों को झेली है हमारी जिंदगी, मौत की सहेली है हमारी जिंदगी, फिर भी नवेली है हमारी जिंदगी। जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, देश के लिए जो कुर्बान हो गए, आने वाली पीढ़ियों के प्राण हो गए, आओ उन्हें मिल के नमन कर लें, सारे बियाबानों को चमन कर लें, आग में जले जो खुद आग बन गए, एक एक फूल का पराग बन गए, जाते जाते कौम को निशान दे गए, हाथ में सभी के हिंदुस्तान दे गए, ऐसे गई ऐसे गई उनकी कुंवारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी। और जनाबे आली आ रहे हैं पहली तारीख को पाकिस्तान से, चीन होके, लेकिन सच्चाई क्या है, बड़ी मित्रता की बातें हैं, मित्रता वित्रता कुछ नहीं है, सच्चाई क्या है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कि सरहदों पे जंग का नगाड़ा बजा है, सरहदों पे जंग का अरे यार एक तरह एटम बम बना रहे हो, फलाने से हथियार ले रहे हो, फलाने से ये कर रहे हो, लेकिन सच्चाई क्या हम बता रहे हैं, सरहदों पे जंग का नगाड़ा बजा है, दुश्मनों का फिर से अखाड़ा सजा है, वक्त की पुकार की एक हो जाओ, बिगड़े हुजूर सब नेक हो जाओ, हिंदू नहीं कोई मुसलमान नहीं है, छोड़ दो उसे जो इंसान नहीं है, मौत की आंखों से आके चार तो करो, भारतवासी भारत का उद्धार तो करो, शहीदों ने खून से निखारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना हारी है हमारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी। और आखिरी बंदे इसका अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के सुनना इसको, कि जाके कभी लौटती जवानी नहीं है, जाके कभी लौटती जवानी नहीं है, वो जवानी क्या की जिसमें पानी नहीं है, आग से कहो कि कभी सर्द ना पड़े, जोश से कहो कि कभी जर्द ना पड़े, एक बार आदमी का दर्द पैदा हो, एक बार कोई तो सुभाष पैदा हो, एक बार माँ की सूनी गोद लौटा दो, एक बार लाल बहादुर को लौटा दो, कब तक जियोगे ये उधारी जिंदगी, जिंदगी ये जिंदगी हमारी जिंदगी, हारेगी ना।
दोस्तों थोड़ी देर पहले कवि सम्मेलन में आपने देखा था, इधर से आवाज़ आई थी कि कुछ हरियाणा भाषा में भी हो जाए क्या प्यार से करें हो जाए। चलो प्यारे, अगर आपकी यही इच्छा है तो एक मेरे परिचित और मुझे विश्वास है बंबई के मंच पर जिसको भी मैंने प्रस्तुत किया है, आदर से बुलाया है, वही कवि बंबई के रसिक श्रोताओं का मन मोहने के लिए सही साबित हुआ है। तो लीजिए भिवानी निवासी डॉक्टर सरल भिवानवी हास्य और व्यंग की कुछ रचनाएं आपको सुना रहे हैं, मुझे विश्वास है आप इनकी रचनाओं को जरूर पसंद करेंगे। जोर से आप सरल भिवानी भी के लिए एक बार
मंजू। पहली रचना किसी प्रांत के भूतपूर्व मंत्री के नाम। गवर्नरी शासन हुआ, टूट गई सरकार, कुछ दिन पीछे पड़ गए मंत्री जी बीमार देखने सर्जन आया, बढ़ा हुआ था पेट देख मन में चकराया, बोला इनको अस्पताल पहुंचाना होगा, है अंदर का रोग, एक्सरे करवाना होगा। फोन किया तो आ गई एम्बुलेंस तत्काल, मंत्री जी पहुंचा दिए तुरंत एक्सरे हाल, लखा सर्जन ने दुखड़ा, मिला पेट में फंसा हुआ भाषण का टुकड़ा, मिला पेट में फंसा हुआ भाषण का टुकड़ा। सर्जन बोला नहीं निकला तो संकट ठन जाएगा, 9 महीनों में पूरा भाषण बन जाएगा। भाई आदित्य जी की एक बात याद आ रही है, ये अध्यापक हैं पहले से, कभी बाद में हुए हैं, एक लड़के से इन्होंने पूछा स्कूल में कि यार इस स्कूल में 4 भाई तो तुम पहले पढ़ रहे हो और कितने बहन भाई हो। उसने बतलाया जी 11। ये बोले 11 तो तुम्हारे पिताजी भाई बहुत बड़े आदमी हैं, क्या काम करते हैं। लड़का बोला जी यही काम करते हैं। एक रचना आपको दे रहा हूं एक महिला सुपरवाइजर की। एक फैक्ट्री में एक महिला हो गई हेड सुपरवाइजर। नित आती वह ढीले ढाले कुर्ता और सलवार सजाकर। उसे देखकर फैक्ट्री के मालिक का था तनमन डोला। एक्सीडेंट की आशंका से एक दिवस वह उससे बोला, मैडम तुमको इस दुनिया में अगर और है कुछ दिन जीना तो इस ढीले पहनावे में आओ हरगिज यहां कभी ना। महिला बोली जिस कारण मैं ढीले वस्त्र पहन के आऊं, अगर जानना ही चाहते तो श्रीमान जी सुनो बताऊं, फिट कपड़े पहनाकर मुझको, सच कहती हूं पछताओगे, अब कपड़े फंसने का डर है फिर तुम खुद ही फंस जाओगे। अच्छा धन्यवाद।
दोस्तों मुझे बड़ी खुशी हुई आपकी इस प्रतिक्रिया पर भी, और प्रतिक्रिया होती है। मैं थोड़ी देर बाद वास्तव में आपकी ओर से कहूंगा, लीजिए जिनकी गाड़ी अभी जा रही है और जो बिल्कुल मन से जाने के लिए तैयार हैं, कोटा निवासी आ रहे हैं कविवर जगदीश सोलंकी।
कविता से पहले मैं चार पंक्तियां सुना रहा हूं। वैसे श्रृंगार मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैंने दो चार पंक्तियां लिखी हैं शालीनता के साथ। आंखों के बारे में आप सुन लीजिए, शायद आपको अच्छी लगे। चार पंक्तियां आंखों के बारे में सुनाऊं मैं? चल रहा पूनम डूबी अमावस के घर सावन सारे सलाखों में डूबे। पूनम डूबी अमावस के घर सावन सारे सलाखों में डूबे। मौसम डूब गया बे मौसम डूबने वाले तो लाखों में डूबे। मौसम डूब गया बे मौसम डूबने वाले तो लाखों में डूबे। शाखों में डूबा है मधुबन सारा पंछी सयाने भी पाखों में डूबे। शाखों में डूबा है मधुबन सारा पंछी सयाने भी पाखों में डूबे। अरे तेरे गए हम यो तो समंदर डूबे तुम्हारी ही आंखों में डूबे। तेरे गए हम यो तो समंदर डूबे। एक सज्जन से भी मेरी एक चर्चा हुई थी, हो सकता है उनकी बात थोड़ी गंभीर हो। उन्होंने मेरे से आगे बताया था कि ये कवि सम्मेलन एक तरफा हो रहा है। मैंने कहा इसका क्या मतलब, मैंने आपका परिचय क्या है? उन्होंने मेरे स्पष्ट कहा था कि मैं कांग्रेस आय का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूं। उन्होंने बिल्कुल सही मुझे जैसा बताया वो आपको बता रहा हूं मैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कवि आज कुछ कहने सुनने से सरकार के विरोध में डर रहे हों। मैंने कहा ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, सरकार के विरोध में कोई कवि नहीं होता, लेकिन जहां अव्यवस्था होती है चाहे सत्ता किसी की भी हो उसी के विरोध में कवि हो जाता है। मैं कुछ चंद पंक्तियां पढ़ रहा हूं। मैं इतना बताता हूं कि देश की किसी भी तथाकथित राजनीतिक पार्टी से मेरा कहीं कोई संबंध नहीं है। आपका हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है, जरूर आप बनाए रखिए, लेकिन अगर आप राजनीतिक पार्टी की अपेक्षा कभी कभी इस मिट्टी देश और जमीन को प्यार करते होंगे तो शायद आप मेरी बात का समर्थन करेंगे। बहुत कड़वे शब्दों के साथ मैं कुछ पंक्तियां आपको सुना रहा हूं, उसके बाद आप चाहेंगे तो मैं एक कविता सुनाऊंगा वरना मैं बैठ जाऊंगा, क्योंकि मैं जैसा देखता हूं जैसा महसूस करता हूं हर दौर में चाहे सरकार किसी भी दल की रहे मैं बिल्कुल वैसा ही सुनाता हूं। जब उनकी थी तब भी सुनाई थी, जब आज है तब भी सुनाता हूं मैं। आप सुनिए, अच्छा लगे तो आप मुझे दाद दीजिए। सुनिए साहब। कुर्सी अब बिग बाजारू कहानी हो गई शायद नमक हरामों की निशानी हो गई। चारों पहिए चार धाम लगने लगे हैं, आदम खौर खाद से पनपने लगे हैं, जैसे भी वसूल ना वसूल रहे हैं, शहीदों के आदर्शों को भूल रहे हैं। ये जीते केवल अपने परिवेश के लिए, हम सब तुम जीते हैं सारे देश के लिए। अरे शाही फरमानों का शाही शोर हो गया और आदर्शों का शासन आदमखोर हो गया। आदर्शों का शासन आदमखोर हो गया। लगवा दो फिर से तुम आपातकाल, लगवा दो, लगवा दो फिर से तुम आपातकाल, लगवा दो। सारे देश भक्तों को जेलों में भरवा दो। लेकिन बूढ़े संत को कहां से लाओगे? अब उस बूढ़े संत को कहां से लाओगे? किसकी काया में नकली गुर्दा लगवाओगे? किस राजन की रातें केरल में तड़पाओगे? क्या जामा मस्जिद तुर्कमान को फिर दोहराओगे? पर नहीं नहीं, ये खेल खरगिज हो ना पाएगा। घर होगा तो अपना दीपक ही घर जलाएगा। क्योंकि मेरी पीढ़ी अब सयानी हो गई और दिल्ली की महारानी अब पुरानी हो गई। दिल्ली की महारानी अब पुरानी हो गई। क्योंकि मेरी पीढ़ी अब सयानी हो गई और दिल्ली की महारानी अब पुरानी हो गई। तुम कहती हो हमको खतरा है पाकिस्तान से, तुम कहती हो हमको खतरा है पाकिस्तान से। मत भरमाओ लोगों को झूठे बयान से, तुम चढ़ कर देखो दिल्ली के दिल के मचान से। तुम चढ़ कर देखो दिल्ली के दिल के मचान से। और हिंदुस्तान को खतरा है संविधान से, हिंदुस्तान को खतरा है संविधान से। खूनी आंधियों के नाम देश मत लिखो, युद्ध की परिभाषा का संदेश मत लिखो। देश के दिल में दानवता के छाले मत करो, भारत को बैसाखी के हवाले मत करो। आदमी पहले ही भूखा नंगा है यहाँ, सर्वगुण संपन्न तो लव फंगा है यहाँ। क्यों गलियों चौराहों में फिर से दंगा है यहाँ? बस कुसने के लिए तिरंगा है यहाँ। क्यों पापियों का वर्तमान चंगा है यहाँ? क्योंकि हड्डियां डुबाने को भी गंगा है यहाँ, हड्डियां डुबाने को भी गंगा है यहाँ। धर्म काले कर्मों के बढ़ावे के लिए, धर्मशाला संतरी के चढ़ावे के लिए। काशी है कुछ पंडों की मनमानी के लिए, तीर्थ तस्करों की मेहरवानी के लिए। आश्रम गए अबलाओं की तलाशी के लिए और डाक बंगले मंत्री की अय्याशी के लिए। कुर्सी अब एक बाजार का। मुझे मंच से एक रचना के लिए आदेश हो रहा है। हाँ सुनिए साहब, हो सकता है वो आपके प्रांत की समस्या नहीं हो, लेकिन देश के कुछ तीन चार प्रांतों की बहुत बड़ी समस्या है, डाकू समस्या। हो सकता है कुछ लोग मानसिक पेशोर हों या कुछ लोग मानसिक विकृति के शिकार होकर डाकू बनते हों, लेकिन कई लोगों को ये देश, ये समाज डाकू बनाने पर मजबूर कर देता है। एक ऐसा ही नाम जिसको आपका देश नहीं, जिसको विदेश तक भी जानते थे और जानते रहेंगे, जिसका नाम था पान सिंह, जिसने ओलंपिक में आपके देश का प्रतिनिधित्व किया था। आखिर उस आदमी के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसको डाकू बनने पर मजबूर होना पड़ा? जो कल तक सिपाही की हैसियत से सरहद पर बंदूक लेके खड़ा था, चंबल की भीड़ में चला गया, पुलिस के हाथों मारा गया। मैं ये मेरी एक अच्छी रचना आप तमाम श्रोताओं को समर्पित करता हूँ। मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा, जिन्होंने नहीं सुनी वो भी सुन लें। सरहद का सिपाही, डाकू समस्या पर एक रचना। एक थोड़ी गंभीर रचना है, शायद आपका प्यार मिलेगा, इस रचना को सुनिए। मैं सरहद का एक सिपाही हूँ, सरहद का एक सिपाही। मैं सरहद का एक सिपाही हूँ, सरहद का एक सिपाही। मैंने लहू का दिया जलाया, मैंने लहू का दिया जलाया, दिए ने घर में आग लगाई। मैं सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का एक सिपाही। खाली कमरे बर्तन रीते, पेट में पलने लगे पलीते, हम सांसों की लेते जुगाली, है मुन्ने का टिफिन बिखाली। एक बिटिया के हाथ कुंवारे, दूजी अपनी उम्र उघारे। एक बिटिया के हाथ कुंवारे, दूजी अपनी उम्र उघारे। बाबुल का
लगा कभी क्यों घर से, माँ की अखियां जर जर बरसे, बाबुल कहा कभी क्यों घर से, माँ की अखियां जर जर बरसे, औरत मरती बिन बेटे के, औरत मरती बिन बेटे के,
बेटे मरते बिना दवाई। मैं सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का सिपाही ने केवल एक बात सीखी है कि तुमने कहा तू आगे बढ़ जा, लो मैं बढ़ गया बिना बिचारे, तुमने कहा तू सूली चढ़ जा, लो मैं चढ़ गया बिना बिचारे, तुमने कहा कर्म ये कर जा, लो मैं कर गया बिना बिचारे, तुमने कहा वतन पर मर जा, लो मैं मर गया बिना बिचारे, बिना बिचारे फर्ज पहचाना, मिट्टी को चंदन कर माना, वतन को माना है वरदान, भूला ना बेबस इंसान, नीलाम हो गया मेरा रखन मेरा शाम सवेरा, दराई बारात लुट गई थी बहिना, तेल चढ़ी उठ गई थी, अब हम किसको कहा तलाश है, घर को दगा दे गई सांसे। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो ताली बजा देना। पैसे के अभाव में हिंदू संस्कृति पर आघात, एक व्यक्ति इस एक पंक्ति की वजह से भी डाकू बना था।
घर को दगा दे गई सासे, बबुल बिना कफन पहुंचाया, बबुल बिना कफन पहुंचाया,
माँ हिंदू होकर दफनाई। मैं सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का
एक बार युद्ध में जाने से मना करता है, माँ कारण पूछे तो तर्क देता है, देखे आप,
मैं मेरा फर्ज जानता हूँ, ना जाने का भी कारण है, इसका भी एक पड़ोसी के घर का ही एक उदाहरण है, ये खुला रवैया शासन का क्या देता एक सिपाही को, जो वतन के आया काम कभी वो घर दे गया तबाही को, उसकी बेवा को शासन द्वारा एक मशीन का लेखा है, जिसके खूनी धागों को कल इस वक्त ने हंस कर देखा है,
फिर प्रेरित इस हा करते स्वर्णिम उपकार जी लेना, जब कभी कलेजा फट जाए तब इस मशीन से सी लेना,
वह सुनी मांग सवेरे फिर एक गाथा को दोहराती है, आंखों की काली परछाई सारी बातें कह जाती है,
अमराई बिन कोयल रोए, तुलसी सूखे बिन पानी के, गहरे दफनाए जाते हैं
जिंदा दिन चार जवान के, ये उपकार किया जाता है, दोहरा दर्द दिया जाता है, सदियों से सदमों को झेला, सपनों से समाजियों खेला, अपना वर्तमान है अंधा, तन पे है अतीत का फंदा, धानी चूनर का तप जपना, लो त्योहार हो गए सपना,
कजली तीज भी मुझे पुकारे, सारा कुनबा मुझे निगारे, रक्षा बंधन रहा अधूरा, रक्षा बंधन रहा अधूरा,
वो बहनों से बिछड़ गए भाई, मैं सरहद का एक सिपाही। मैं सर अंतिम पंक्तियां, डाकू बनने का कारण जो युद्ध के समय जो स्थिति सरहद पर सिपाही की होती है, दुश्मन से कभी घिरा मैं तो बाबुल ने राम जपा होगा, घर प्यास लिए भटका मैं तो आंचल ममता का तपा होगा,
जब हाथ हुए हो आवारा तब धागा एक जला होगा, मस्तक बेकाबू होने पर सिंदूर कहीं सुलगा होगा,
बुझ गई रोशनी आंखों के सारा कुनबा रोया होगा, घुटनों के गिर जाने से भाई चैन से कब सोया होगा,
जब अंत समय आया तो धरती के आंसू छूटे होंगे, बिटिया के खिलौने उसी वक्त अपने हाथों टूटे होंगे,
बच गया पता नहीं मैं कैसे, डस गया कोई सपना जैसे, फिर एक बार ले छुट्टी आया, सारे रास्ते मन हरसाया, माँ देखेगी लेगी बलैया, गुड़िया चलती होगी पैया,
घर पहुंचाना पूछा कौन,
डाकू बनने का कारण घर पहुंचाना पूछा कौन, सारा घर ही पाया मौन। मेरी बहिना बिलख रही थी, औरत का है सिसक रही थी, सक्षम खड़ी थी एक हवेली, जो कह रही थी एक पहेली। मेरी औरत का सत टूटा, ताकत वालों ने सब लूटा। फिर मैंने कानून पुकारा, उसने कुत्ते सा दुत्कारा। उस पल मैंने कुछ न बिचारा, दूजे पल था मैं हत्यारा। कर्म की बुझ गई एक पहेली, लहू से कर दी लाल हवेली। न्यायालय की कलम भागी, इसलिए आज बना मैं बागी। चम्मल शरणी आ गया तेरी, चम्मल शरणी आ गया तेरी। लो फिर से बंदूक उठाई, फिर क्या करता एक सिपाही, बोलो क्या करता एक सिपाही, फिर क्या करता एक सिपाही, बोलो क्या करता एक सिपाही। मैंने लहू का दिया जलाया, मैंने लहू का दिया जलाया, दिए ने घर में आग लगाई। था सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का एक सिपाही, था सरहद का एक सिपाही, मैं सरहद का एक।
मेरे पास कवि सम्मेलनों के संचालन करते वक्त अनेक तरह की पर्चियां आया करती हैं। कुछ लोग इच्छा प्रकट करते हैं कि हमें इस कवि से उसकी ये रचना सुनाएं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें फलाने कवि की ये रचना जरूर सुनवाने की कृपा करें। लेकिन शरद जोशी के बारे में अनेक पर्चियां मेरे पास आई हैं, और इन पर्चियों के साथ मुझे एक छोटी सी घटना याद आ जाती है कि एक बार मेरे पास एक पर्ची आई और मुझे कहा गया कि साहब इसकी घोषणा कर दीजिए। मैंने घोषणा की कि फलाने आदमी जहां भी हो फौरन अपने घर चले जाए। सामने से एक आदमी खड़ा हुआ, पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आई कि बैठ जाइए बैठ जाइए, मैं तो ये देखना चाहती थी यहीं हो या और कहीं गए हुए हो। अच्छा है शरद जोशी की रचना सुनने के पहले ऐसे कोई व्यक्ति बैठे हों तो वो बैठे ही रहे, उठ कर न जाए। जो खड़े हो गए उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि अपना स्थान ग्रहण कर ले और दत्त चित्त होकर सुने। आ रहे हैं अमर रचनाकार श्री शरद जोशी।
कुछ छोटी छोटी कहानियां पढ़ रहा हूं, संदर्भ पुराने हैं मगर आप समझ जाएंगे, जाने माने संदर्भ है। पहली कहानी, अंत समय में पांडव हिमालय गलने गए तो एक कुत्ता भी उनके पीछे चल पड़ा। आगे पांचों पांडव, पीछे द्रौपदी और उनके पीछे कुत्ता। पांडवों ने उस कुत्ते से पूछा, तुम किसके कुत्ते हो और हमारे पीछे पीछे क्यों आते हो? कुत्ते ने कहा, मैं किसी का कुत्ता नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। बात यह है कि एक महाभारत हम कुत्तों में भी हुई थी, सब मर गए, मैं अकेला बचा हूं, सो हिमालय पर गलने जा रहा हूं। तुम्हारे साथ तुम्हारी कुतिया नहीं आई? द्रौपदी ने प्रश्न किया। उसी की वजह से सारा महाभारत हुआ था। दूसरी कहानी, तालाब के पास एक कॉलेज था। कॉलेज में लड़के पढ़ते थे, तालाब में मेंढक रहते थे। सारा दिन इनका शोर रहता, सारी रात उनकी टरटर चलती। एक दिन एक मेंढक उछलता हुआ कॉलेज के अंदर आ गया। लड़कों ने मेंढक देखा तो ताक ताक कर उसे पत्थरों से मारा, टांग पकड़कर एक दूसरे पर उछाला, फेंका, उससे खेले, उसे किक मारी, यानी उसकी जितनी दुर्दशा कर सकते थे की। हारा थका घायल लहूलुहान मेंढक यह कसम खाता कि अब यहां नहीं आऊंगा, तालाब वापस लौटा। मेंढकी ने मेंढक की हालत देखी और पूछा, लड़कों ने तुम्हें क्यों मारा? क्या तुम उस कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए?